Hi, good evening everyone. So welcome back to Research with NJ, and today I have an expert guest, a certified trainer with me, Mr. Vanil Kumar, and his trainee Rajat Kumar. So today episode is a special one because we will be discussing this in a local language, that would be Hindi, because to reach out to the maximum people, and because of the subject matter actually, because you know, this is about fitness training and how one can, you know, come back from an injury through proper scheduled and, you know, disciplined training. So here Rajat is actually you know, he underwent ACL tear and he went some sort of surgery regarding that, and his meniscus was also damaged. So Rajat, please tell us about your injury. And
so hua kya tha ki I met with an accident 2019 में ऐसा हुआ था, मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ था, दैट वाज इन यूरोप. सो मैं यूरोप गया था, वहाँ पे मेरा ACL राइट नी का टियर हो गया था, इंक्लूडिंग मेनिस्कस. देन अराउंड 3-4 मंथ्स मैं पूरा बेड रेस्ट पे था एंड रिहैब शुरू हुआ. अप्रॉक्सीमेटली मुझे अराउंड 1.5 साल लग गया इसको, इससे रिकवर करते करते. सो उससे पहले मैं ऑल्दो जिम करता था, बट कुछ भी खाता था, कुछ भी ऐसे नॉर्मल जिम चलता रहता था. बट जब इंजरी के बाद मैंने सोचा चलो अब प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करनी है, देन मैं मिस्टर वनिल सर के पास आया और उनसे मैंने अपनी ट्रेनिंग शुरू करी. इनिशियली उन्होंने मेरे को बोला खुद से करो, बट येस आफ्टर सर्टेन टाइम मैंने फिर इनके साथ ट्रेनिंग करना शुरू करा, और उसके बाद अच्छे, बहुत अच्छे रिजल्ट आए. एंड मैं 95% यू कैन से मैं प्रॉपरली रिकवर कर चुका हूँ. मेरा नी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है. एंड यस कि और काफ़ी अच्छा मैंने वेट भी गेन करा है, इंक्लूडिंग मसल मास. सो ये एक जिस्ट था मेरा इंटायर जर्नी का, कि कैसे मैंने अपना ट्रेनिंग शुरू करी और किस लेवल पे नीट क्लीन खा के मैंने सारा अपना वेट गेन शुरू करा. सो ये एक ओवरऑल जर्नी का एक्सपीरियंस था.
सर आपने, मतलब जब रजत आपके पास आए थे तो किस तरीके का एक परसेप्शन था आपके माइंड में, मतलब कि क्या देख के लगा कि इसकी इंजरी को कि कैसे होगा, क्या इसके लिए किस तरीके की एक रिसर्च बेस्ड माइंड था, मतलब बिकॉज कि हर बंदा एक अलग प्रॉब्लम लेके आता है, एक अलग बॉडी स्ट्रक्चर लेके आता है, तो आपके दिमाग में क्या चला उस तरीके को?
जी बिल्कुल, जब भी कोई भी मेम्बर हमारे पास आता है तो हम उसका गोल पूछते हैं, साथ में हम उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं. रजत को मैं जानता था कुछ टाइम से, तो मुझे पता लगा कि उसको नी इंजरी के बाद जैसे सर्जरी हुआ है, तो अब उसको रिहैब में स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत पड़ेगी दोबारा. तो हमारा जो टारगेट था, उसके नीचे सराउंडिंग मसल जो भी हैं, क्वाड्स है, क्वाडिसेप्स, हैमस्ट्रिंग और एडक्टर, एब्डक्टर, फिर आपका काफ पे जम जाएंगे, तो गैस्ट्रोनीमेसोलिस, सबका स्ट्रेंथनिंग करवाना, और साथ के साथ उसका बाकी बॉडी पे भी हमने बहुत फोकस किया. बट हमारा जो प्राइमरी गोल था वो नी की स्ट्रेंथनिंग था, तो उसको पूरा स्केड्यूल बनाया कैसे कैसे कितने कितने टाइम में करना है, तो और हार्ड वर्क रहा उसमें, थोड़ा सा न्यूट्रिशन का सपोर्ट नो डाउट 70% रहता ही है, उसमें भी हमने काम किया और रिजल्ट आपके सामने.
सो अप्रॉक्सीमेटली आप ये लगाओ, जब मैंने शुरू करा तो मैं अपनी राइट नी से 5 kg उठा पाता था, अब उसी से मैं अराउंड, अगर आप दोनों ही लेग्स को मिला लो तो अराउंड अगर लेग एक्सटेंशन नहीं बात करें फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज की, तो उसे अराउंड 50 kg प्लस आराम से उठ जाता है, जो पहले 5 kg भी नहीं उठ पाता था ढंग से. सो काफ़ी हद तक यू नो वनिल सर का सपोर्ट रहा है कि कैसे तो, हमें करना चाहिए.
ये तो 10x का बेसिकली वेट गेन है, मतलब काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है एंड काफ़ी अच्छी कंडीशनिंग है. मेरा सवाल सर आपसे बड़ा सिंपल सा है, मतलब कि इस जर्नी को, इसकी कंडीशनिंग में, मतलब रजत सर की कंडीशनिंग में आपको क्या, मतलब किस तरीके की आपको एक प्लानिंग, रिसर्च, किस तरीके की, एक एक मसल अलग अलग रिक्वायरमेंट मांगती है, न्यूट्रिशन मांगती है,
देखिए
तो आप कैसे उसको प्रेप करके चल रहे थे?
बिल्कुल, हमें जो बेसिक मूवमेंट है नी की स्ट्रेंथनिंग का, उसको नी एक्सटेंशन मूवमेंट आप लेकर चलेंगे अगर आपको क्वाड्स की स्ट्रेंथनिंग करना है, तो उसको हमने स्केड्यूल किया कि भाई अभी हमें इस ज़ीरो वेट से शुरू करना है, खाली मूवमेंट ट्राई करना है. जब उसमें हम बेटर होते गए तो हम ऊपर गए, साथ में कुछ एक आइसोमेट्रिक होल्ड्स भी हमने उसको दिए जो कि उसको स्ट्रेंथनिंग में बहुत काम आएंगे, और साथ में फिर हमने जो हैमस्ट्रिंग का भी स्ट्रेंथनिंग शुरू करा, मशीन पे शुरू में नहीं किया, वो भी आइसोमेट्रिक की हेल्प से किया, और जो एडक्टर का स्ट्रेंथनिंग किया वो भी आइसोमेट्रिक पे किया। तो शुरुआत हमारी ज़्यादातर आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के साथ में रही, मैनुअल रही। धीरे धीरे हमने और ज़्यादा मशीन्स की हेल्प लेना शुरू किया। और जो लोड का प्रोग्रेस है नमन, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप उसमें प्लान तो करते हैं लेकिन वो डिपेंड करता है रिकवरी पर भी। जैसे जैसे रजत का रिकवरी मुझे बेटर दिखाई देता रहा, मैं उसको कह सकते हैं आप 0.5%, 1%, 10% धीरे 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 स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं उसको इंक्रीज करता चला गया। और आज की डेट में मुझे नहीं लगता ऐसी कोई भी एक्सरसाइज है जो रजत नहीं कर पाता है। हाँ, नो डाउट जो हम सभी को नहीं कराते हैं, फुल स्क्वाट हम किसी को भी नहीं कराते हैं, नी के लिए हार्मफुल है, तो वो हम रजत को भी नहीं कराते
सर। वो तो आप मुझे भी नहीं कराते, ये बात तो मैंने जो नोटिस करी है।
जो बेसिक साइंटिफिक मूवमेंट्स हैं हम वही सभी को कराते हैं, वही हम उसको कराते हैं, सारी मूवमेंट्स वो कर पाता है।
बट हाँ, मतलब उसके पीछे का मतलब कारण क्या, मतलब कोई साइंटिफिक लॉजिक अगर मैं जान मतलब दर्शकों को जानना पड़े कि हाँ मतलब क्यों फुल स्क्वाट क्यों नहीं कराने चाहिए या करने चाहिए।
देखिए, अगर आप एक प्रोफेशनल है वो एक स्पोर्ट्स की तरह करते हैं तो लोग उसमें वो एक डिबेट का अलग एक चैप्टर आ जाता है,
क्योंकि आई थिंक वो बाउंस का जो क्वेश्चन।
लेकिन अगर आप नॉर्मल जाएंगे तो आप बोन से आप उसको देखते हैं, मसल से नहीं देखते हैं। आप 90 डिग्री तक जाइए वापस आई तो आप सफिशिएंट क्वाड्स पे काम कर लेते हैं तो उतना ठीक रहता है। तो आपको उसमें लॉन्ग टर्म में नी नहीं इफेक्ट होता है बिल्कुल भी, क्वाड्स की स्ट्रेंथिंग पूरी होगी बिल्कुल। फुल रेंज का मतलब लोग ये लेते हैं कि बिल्कुल ग्लूट्स को नीचे ले जाओ, टच करके लाओ, वो बहुत हार्मफुल है आपके नी के लिए।
उसमें आप इसमें MCL पे ज़्यादा इफेक्ट आता होगा
जी।
एंड इसमें थाइस का कितना रोल रहता है, बिकॉज नीज की इंजरी बहुत ज़्यादा थाई डिमांड करती है, थाई पे लोड बहुत लेती है।
नी की जो ज़्यादातर इंजरी है, एक तो ईगो लिफ्टिंग की देन है, दूसरा उसमें जब आप विदाउट वार्म अप ट्रेनिंग करेंगे तब है। अगर आप वेट के लिए जा रहे हो और स्टेप बाय स्टेप वेट बढ़ाते हो तो बहुत कम चांसेस होते हैं। देखिए, इंजरी और एक एक्सीडेंट तो आपको कभी भी हो सकता है, लेकिन अगर आप तरीके से चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप वेट बढ़ाते हैं तो ऐसा कोई इश्यू जल्दी नहीं आता है। ठीक है, अगर आपको पता है कि आपने जर्की मूवमेंट नहीं किया है, आपने विदाउट वार्म अप वर्कआउट नहीं किया है, आपने जो है रेंज के मामले में आप जर्क नीचे जाके बिल्कुल बैठ के नहीं उठ रहे हैं तो इतनी जल्दी आपको इंजरी नहीं होती।
नहीं होती। तो रजत, आपको ऐसा कभी लगा था मतलब ड्यूरिंग योर रिकवरी पीरियड की थोड़ा सा लालसा आ रही हो कि आज तो मैं ये कर दूँ, इस तरीके का वेट बढ़ा देता हूँ, कभी भी ऐसा कुछ लगा हो? दो मुझे पता है नहीं होगा, बट फिर भी कभी ऐसा
नहीं,
कुछ
आता तो है, आता तो है जब पता है कि इतना आराम से वेट उठ रहा है तो वो तो फीलिंग आती है कि यार और वेट बढ़ाओ और वेट बढ़ाओ। बट यस, ठीक है, मैं समझता हूँ कि सारी कैलकुलेशंस और सारी नी की कंडीशनिंग देख के ही सारा वेट बढ़ाया जाता है, बट लालच आता है डेफिनेटली।
ऐसा बहुत बार होता है कि रजत को लगता है भैया मैं और बढ़ा सकता हूँ बट मैं उसे रोकता हूँ। मैंने
तो उस तरीके में क्या मेंटल प्रिपरेशन, किस तरीके से रोकना, किस तरीके से वो एक परसिवियरेंस, पेन को कंट्रोल करना और एक मजे को भी, मतलब मजा भी अपने आप में एक दुखदाई ही होता है, तो उसमें आप कैसे उसको कंट्रोल करते हो?
एंड ऑफ डे बात यह है कि आपको फिट रहना है, प्रॉपर जो भी आपकी मसल्स टूटी हैं एक्सरसाइज करते हुए वो रिकवर होनी चाहिए। तो वो ठीक है, वो रहता ही है कि हमें वेट बढ़ाना है, बट यस हमें ये भी देखना है कि पास हिस्ट्री आपकी क्या रही है और ठीक है कैपेबिलिटी है, बट यस ग्रेजुअली और बाद में और बढ़ जाएगा, बट एकदम से लोड देंगे तो और इंजरी के होने के चांसेस है दोबारा। तो ठीक है, होता है, बट यस सारी चीज़ें कैलकुलेशन देखनी पड़ती हैं।
नहीं, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जनरली जिम में या ट्रेनिंग सेंटर्स में लोग ये नज़रअंदाज करने की बहुत जल्दी कोशिश करते हैं। आते तो बहुत मतलब डिटर्मिनेशन से कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो ये होता है कि आज तो मैं कर ही जाता हूँ।
Exactly.
आज एक दिन का शायद कुछ नुकसान हो सकता है।
इसमें एक ज़रूरी बात ये भी है कि आपको हर कुछ समय के बाद अपने छोटे छोटे जो है गोल्स सेट करने हैं। तो हमारा गोल यही था कि भाई हमने पहले नी को अभी की कंडीशन से बेटर करना है। जब हम वहाँ पहुँच गए फिर हमें लगा नहीं यार अब इस नी को हमें दूसरे नी के आसपास लेकर जाना है, तो हम वहाँ पहुँच गए। अब हमें क्या, हम रनिंग भी करते हैं, रजत अच्छे खासे स्क्वाट्स भी लगाता है, लंज भी करता है, लेग प्रेसेस करता है, हर एक जो एक नॉर्मल बंदा करता है वो सारे मूवमेंट ही कैन डू। और एट द सेम टाइम आई थिंक हमने पीछे क्वार्टर हमने एब्डोमेन को बिल्कुल डिवोट किया और 3 to 4 months लगे हमें एब्स, ऐसा नहीं कि एब्स को हमने जादू से बनाया, वो उस टाइम से हम प्रिपेयर कर रहे थे उसको, बट उस 3 to 3.5 महीने में हमने उसको बिल्कुल शार्प किया और आप कोई भी टेस्ट करा सकते हो, बिल्कुल नेचुरल हमने ऐसा किया, प्रॉपर न्यूट्रिशन की हेल्प से किया, विदाउट एनी सप्लीमेंट, ओनली प्रोटीन ही यूज टू टेक, अदर
बट मैंने आज तक कभी इतना फोकस नहीं करा कि क्या नाम है मसल्स ज्यादा हों या फिर एब्स हों, मैंने कभी ऐसा फोकस ही नहीं था, बट जब से मैंने ट्रेनिंग शुरू करी है तब से मुझे ये लगता है क्लीन क्लीन जितना खाना चाहिए और उस हिसाब से ना मसल ऑटोमेटिकली अच्छी निकलती है, निकल के आती है। सिंपल एग्जांपल है कि आज तक कभी एब्स थी नहीं मेरी, और अब आप ये लगा लो कि मैं 3-4 मंथ्स में ही मेरी एब्स आ भी गई हैं और वो मैंने प्रॉपर्ली मेंटेन भी करी हैं। अब कभी कभार ऐसा होता है कि चीट डे हो ही जाता है, बट यस ये होता है कि हाँ भाई वो बाद में मैनेजेबल हो ही जाती है चीज़ें।
मेरा तो 2017 के बाद से चीट ईयर चल रहे हैं डेज की में चल रहे हैं
तो हाँ ये चीज़ है। अब अंदर से ही वो गिल्ट फीलिंग आ जाती है, कभी कभी उल्टा खा लिया तो लगता है कि यार नहीं यार नहीं खाना चाहिए, और उसको फिर निकालना वो मेन प्रायोरिटी रहती है।
तो वो फिर तो अंदर से स्ट्रेंथनिंग कैसे कैसे मतलब वो कंट्रोल वो कैसे मतलब किस तरीके की प्रिपरेशन होती है, किस तरीके का डिवोशन है चाहिए उसके लिए,
अब
क्या है बेसिकली वो एक
अब वो अंदर से वो नेचुरली आ गया है ये अपने आप की।
क्या ये इंजरी का एक मतलब एक पॉजिटिव इफेक्ट है या एक मतलब
वो भी कह सकते हैं
या एक एक डिसिप्लिन एंडेवर किया गया है या सॉर्ट ऑफ योगा की तरीके से लिया गया है, क्या किस तरीके की प्रिपरेशन है, कैसे वो
बात ऐसी होती है ना कि अगर रिजल्ट दिखते हैं ना बॉडी पे तो ऐसी चीजें करने का मन नहीं करता फिर। चलो वंस इन अ ब्लू मून हमने चीट डे कर लिया, बट वो रेगुलर नहीं करा जाता। एक हाँ अंदर की एक सेटिस्फेक्शन होती है, चलो आज ये खाने का मन करा चलो खा लिया, बट कंटिन्यूस प्रोसेस वो नहीं होता और मन भी नहीं करता और बॉडी भी नहीं अलाउ करती और आपका मन भी बिल्कुल नहीं मानता। तो अब ये अंदर से और नेचुरली इनकलकेट हो गया कि हमें क्लीन खाना है, हमें बॉडी मेंटेन करनी है, अपनी मसल रिटेन करनी है, बॉडी का स्ट्रक्चर एकदम परफेक्ट रखना है, वो ऑटोमेटिकली अंदर से आ गया जब से नीट खाना शुरू करा है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस सिस्टम में ऑलरेडी आ गया है।
तो क्या है ये क्लीन क्लीन ईटिंग, क्या क्या
है ये क्लीन ईटिंग में? यही हम किसी को कम खाने के लिए नमन नहीं बोलते हैं, और मैं अकेला खुद आई एम नॉट अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, लेकिन मैं फिर भी बेसिक न्यूट्रिशन हमने किया है हर सर्टिफिकेशन में, लेकिन हम साथ में एक एक्सपर्ट की और हेल्प लेते हैं इसमें कि आपको ये न्यूट्रिशन में ये चीज़ें फॉलो करनी है, इतना एक अप्रोक्स आइडियली इतने कार्ब्स चाहेंगे, इतना रेशो प्रोटीन का रहेगा, इतना फैट का रेशो भी ज़रूरी है वो रहेगा, ये टाइमिंग रहेगा सबका, प्रॉपर एक स्केड्यूल बना के हम क्लाइंट के साथ में शेयर करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने में उसको हेल्प करते हैं। जब कभी वो चीट करता है तो थोड़ा सा उसको नेक्स्ट डे
एक्स्ट्रा
करवाते हैं थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ कि हाँ भाई अगली बार से ध्यान रखा जाएगा। तो ऐसा 2-4 चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। न्यूट्रिशन अगर हम डिस्कस करने लगते हैं तो इट विल बी अ लॉन्ग चैप्टर, राइट नाउ तो ये एक थोड़ा सा
नहीं तो बेसिकली मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बेसिकली जैसे न्यूट्रिशन तो बहुत इंपॉर्टेंट नो डाउट, आपने स्टार्टिंग में भी कहा 70% खेल ही न्यूट्रिशन का है, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन ठीक नहीं होगा तो वो रिजल्ट्स भी नहीं डिलीवर होंगे आपकी मेहनत के
साथ में। एक ना नमन ये चीज़ और बहुत 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 ज़्यादा मैटर करती है कि वर्कआउट के बाद आपका रेस्ट कितना है। आप यकीन मानिए जितना रोल आपके न्यूट्रिशन का है उतना ही रोल उस मसल को रेस्ट का भी है। अगर मैं उसको ओवर ट्रेन करता तो ये रिकवरी शायद नहीं हो पाती। जितना उसको ट्रेन किया उसको रिकवर होने दें आप मसल को, उसको तब आप न्यूट्रिशन दें रेस्ट दें तो वो रिकवर करेगा। अगर मैं सेम डे उसको सेम उतना ही स्क्वाट नहीं, अभी हमने अगर एक दिन आइसोमेट्रिक किया है तो कभी हम फिर उसका स्ट्रेंथनिंग भी कर रहे हैं, और हमें पता है कि हमने स्केड्यूल किया है कि वीक में हम एक बार कभी ट्रेन करें, कभी 2 बार करें, कभी 3 बार करें, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अभी मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि वो कितना, तो हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है उसमें।
तो बेसिकली जैसे अभी न्यूट्रिशन की ही चल रही है बात, तो उसके अंदर हमारी जैसे इंडियन डाइट है जो वो जनरली कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट कार्ब बेस्ड है, तो उसको कैसे ओवरकम करना पड़ता है? बिकॉज यू नो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो प्रोटीन थोड़ा सा इंटेक ज़्यादा चाहिए।
पहले तो नमन एक बात समझिए कि कार्बोहाइड्रेट भी शरीर के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि प्रोटीन, ठीक है? तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और हमारे यहाँ जो खाने में खाली हम यही नहीं, जो बाकी हमारा नेचुरल जो इंडियन अपना फूड है उसमें ऐसा नहीं है कि प्रोटीन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है। डिपेंड करता है हम कितना खा रहे हैं, हम लेते नहीं हैं प्रोटीन। हमारे आधे लोग ये ध्यान रखते हैं आज मंडे आज ट्यूजडे आज खा रहे हैं आज नहीं खाना है, तो एग्स खा सकते हैं आप चिकन खा सकते हैं आप, जितने भी ये दालें हैं आप ये खा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं जिसको आप अलग अलग फॉर्म में ले सकते हो, बट उसको प्लान करना पड़ेगा। आप प्लान करेंगे अपने शरीर के लिए, जैसे हमने स्कूलों में पढ़ाई के लिए प्लान किया पेरेंट्स ने, ऐसे शरीर के लिए आप प्लान करें अपने रूटीन, अपनी डाइट, तो आप आगे जाएंगे, जो कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमारे छोटे छोटे टारगेट के लिए लोग जिम ज्वाइन करते हैं, लेकिन कभी एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए नहीं करते, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो ये तो खैर मैंने थोड़ा सा देखा है, मतलब मैंने अपने टाइम पीरियड में जब जब मैं आता हूँ, तो ये तो मुझे भी कहा गया है कि अपनी लाइफस्टाइल को, मतलब जिम को लाइफस्टाइल में इंक्लूड करोगे तब जाके एक फ़ायदा है। बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा काम का वर्कलोड, इतना अनप्रडिक्टेबिलिटी अनसर्टिनिटी रहती है कि वो एक डिसिप्लिन लाइफ नहीं हो पाती है, मेरे से नहीं हो पाती है, दो इवन दो आई सो मच वॉन्टेड।
अगर आप शरीर को और ज़्यादा फिट करोगे और ज़्यादा आप उसको जो है डिसिप्लिन करोगे, आपके जो वर्क की जो एफिशिएंसी और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, आप इसको
ये बात तो मैं एग्री करता हूँ। ये तो मैंने 2017 में जब मैंने बहुत रिगरसली अपना सुबह 6 to 8 का मैंने शेड्यूल रखा था।
ध्यान रखें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ जिम करें, वर्कआउट करें, किसी भी टाइप का वर्कआउट, वर्कआउट इज वर्कआउट।
अब जैसे ये है, मैं ऑफिस जाता हूँ तो मेरा ऑफिस वैसे 6th फ्लोर पे है और 3 फ्लोर नीचे पार्किंग होती है, तो मेरा हमेशा यही रहता है कि मैं कभी लिफ्ट यूज़ ना करूँ। हमेशा मैं ऑफिस जब जैसे ही ऑफिस पहुँचता तो मैं लिफ्ट नहीं यूज़ करके स्टेयर्स ही चढ़ता हूँ हमेशा, और ये अब मेरी हैबिट ही हो गई है। 9 - 3 और प्लस 6 फ्लोर, तो 9 फ्लोर मैं हमेशा पैदल ही चढ़ता हूँ। तो ये एक ऑटोमेटिकली डेडिकेशन हो ही गया है कि बॉडी के लिए कि यार अच्छा खाना है, अच्छा फिट रहना है और सब नेचुरल तरीके से ही चले, तो ये ऑटोमेटिकली चीज़ें आ गई अंदर विद टाइम, पहले कभी नहीं था ऐसा।
ये तो मानना पड़ेगा, बिकॉज मैंने जब 2017 में जब मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर था तो उस टाइम पे भी ऐसी चीज़ें रहती थी कि 3 दिन तो जिम वर्कआउट बिल्कुल बहुत सीरियस रहता था, बहुत डिसिप्लिन रहता था, और 2 दिन उसमें मैं उसके बाद खेलता था, सो दैट वुड हैव बीन ईदर बैडमिंटन और स्क्वाश। तो मेरा थोड़ा कार्डियो, थोड़ा मतलब कोर स्ट्रक्चर थोड़ा हिलता था उस ज़्यादा में, तो वो एक मेंटेन हो जाता था, तो मैं 3 दिन में नहीं करता था कोर को, बट वो एक मेंटेन हो जाता था, तो एक जर्नी अच्छी चलती थी। तो मैंने कुछ 15 to 16 months वो मेरी बहुत प्यारी जर्नी रही और मैं बहुत मिस करता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली अब जैसा वर्कलोड आता जा रहा है, इतनी अनसर्टेनिटीज़ बढ़ गई हैं, टाइमिंग का कुछ पता नहीं चल रहा है, सुबह जाने के टाइम फिक्स हैं लेकिन आने का कोई वो नहीं है, तो इस तरीके से ये मुश्किल हो जाता है।
एक चीज़ मैंने ज़रूर सीखी है, जैसे इंजरी से पहले जब मैं वर्कआउट करता था तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैं 1.5 घंटा कर लिया, 2 घंटे कर लिया, ऐसे कर लेता था, बट अब मुझे समझ आ गया बॉडी के लिए 40 मिनट्स ही बहुत है,
बहुत
सफिशियंट है। अगर डेडिकेटेडली करो, टारगेट हिट करो, तो 40 मिनट्स मोर देन सफिशियंट है, आपका सारा रिजल्ट उसी में ही आ जाएगा। और बाकी ऑफकोर्स न्यूट्रिशन एक मेजर रोल प्ले करता है,
कोई पेशेंट है या फिर मान लीजिए किसी को कार्डिक कोई डिसीज है और हाइपरटेंशन का कोई पेशेंट है, तो ऐसा नहीं है कि उन लोग के लिए वर्कआउट नहीं है, उन सभी को करना चाहिए, नो डाउट, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप वो भी चलेंगे, हर किसी के लिए अलग अलग पैरामीटर्स हैं, उसके हिसाब से आप चले और किसी ना किसी के सुपरविज़न में करें, और वो ट्रेनर एक सर्टिफाइड ट्रेनर होना ज़रूरी है, उसको पता होना चाहिए कि क्या कराना है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं कराना है, कितना कराना है और किससे ज़्यादा नहीं कराना है, कितना रेस्ट देना ज़रूरी है, ठीक है, कौन सी मूवमेंट जाएगा, कौन सी मूवमेंट नहीं जाएगा, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि 2002 से मैं लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ, और हर बीमारी के बाद, हर इलनेस में हमने लोगों को ट्रेन करा है, और बहुत स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलते हो तो कभी नुकसान नहीं होगा।
आजकल का जो ये ट्रेंड कोविड के बाद जो एक नया चला है कि मतलब कार्डियक अरेस्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, एंड डेफिनेटली विद इन द जिम करते करते एकदम बंदा मतलब
उसमें नमन 2-3 बातें हैं कि जिसको भी अगर ऐसा अनफॉर्चुनेटली ऐसा कार्डिक अरेस्ट हो रहा है जिम में, तो एक तो कोविड के बाद की हिस्ट्री मायने रखती है उसकी, सेकंड थिंग के कार्डिक अरेस्ट किसी को कहीं भी हो सकता है, बट उस इंसान को जिम में हुआ है तो वो एक अलग मैटर है, क्योंकि कार्डिक अरेस्ट मान लीजिए अगर किसी को चलते भी हो रहा है, डांस करते भी हो रहा है, घर पे भी हो रहा है, शादी में भी हो, सभी जगह हो रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर जिम में हो रहा है तो वो थोड़ी चीज हाईलाइट हो गई है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनको जिम की वजह से हो रहा है, उनको प्रॉब्लम था तो वो कहीं ना कहीं बड़ा तो उस टाइम पे हो गया, ऐसा आप कह सकते हैं।
बहुत सारी कॉन्वर्जेशंस इस तरीके से डेवलप होने लग गई हैं, मतलब मैं स्पेसिफिकली किसी और की तरफ तो नहीं जा रहा, मतलब बट एक बहुत जनरलाइज बात कर रहा हूँ इसमें, कि बच्चे प्रोटीन खाते हैं, लोग प्रोटीन खाते हैं या बहुत ज़्यादा कार्डियो करते हैं एक्सेसिव, इवन दो ये ऐसी बातें नहीं है, इवन दो डॉक्टर्स ने भी इस बात को नल एंड वाइट किया है नो डाउट, बट फिर भी मतलब एक जिम ट्रेनर का क्या पर्सपेक्टिव रहता है उस तरीके का कि ऐसा कुछ उठ रहा है एंड देन व्हाट प्रिपरेशन दैट गोज बिहाइंड।
जहाँ तक बात है प्रोटीन की, प्रोटीन अगर आपकी न्यूट्रिशन डाइट में जो है प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, देन आई थिंक यू शुड गो फॉर अ प्रोटीन, एक अच्छे हेल्थ एक्सपर्ट, एक अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट की हेल्प लीजिए आप, वो आपको गाइड करेंगे कि आपको कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपको लेना है उसमें। और जहाँ तक मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ जिम में, कि भाई आप किसी भी अच्छे रिकॉग्नाइज ब्रांड के पास जाइए और वहाँ से लीजिए, कभी भी हम लोग अपने जिम में नहीं सेल करते हैं किसी भी टाइप का प्रोटीन, कोई भी फूड सप्लीमेंट हम लोग नहीं सेल करते, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है, हमारा काम है लोगों को ट्रेन करना और हम सिर्फ लोगों को ट्रेनिंग कराते हैं, दैट्स इट। जो आपको ये सारी सुविधाएं दे रहा है उसको कहीं ना कहीं इसमें छोटा मोटा लालच जुड़ा होगा, जो मुझे नहीं लगता कि किसी ट्रेनर को करना चाहिए, ठीक है। और रही बात कि भाई इन चीज़ों से नुकसान हो रहा है आपको, ऐसा नहीं है, अगर आज जितने भी ये बड़ी कंपनीज है जो भी हेल्थ ड्रिंक्स आजकल सेल कर रहे हैं, वो मतलब स्पेशली उस लाइन को बोलते हैं कि भाई इसमें है वे प्रोटीन आप ये लो, इसमें है वे प्रोटीन आप ये लो, तो सभी लोग वे प्रोटीन को प्रमोट कर रहे हैं, और उसमें ऐसा कुछ है नहीं प्रोटीन में, अगर आप नेचुरल नहीं उसे पूरा कर पा रहे हैं तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। अगर आप नेचुरली उतना ले सकते हैं और आपकी डाइट में है उतना तो आपको कोई ज़रूरत नहीं।
पॉइंट यहाँ पे भी है ना, कोई ये डिस्कस नहीं करता कि जो जिस पेशेंट को भी हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट आया है उसकी पहले हिस्ट्री क्या रही है,
हिस्ट्री क्या थी
उसके, उसके मतलब ब्लड में उसमें ऐसा कुछ ये प्रॉब्लम थी या नहीं थी, या फिर बीट हार्ट अटैक बोलो या फिर कोई लिपिड प्रोफाइल भी बोल लो आप,
कुछ भी हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है, वो कोई वो किसी को कुछ पता ही नहीं है।
और नमन आप एक चीज़ मानिए, हमारे यहाँ पे ट्रेंड अभी भी उतना नहीं है कि हर क्वार्टर या हर सिक्स मंथ पे लोग अपने टेस्ट कराएं, वो हेल्थ चेकअप कराएं, और हमें ये हमारा रूटीन है अपने हर मेंबर को हर क्वार्टर या सिक्स मंथ पे, रजत को मैंने बोल दिया,
इवन मेरा भी है, इवन
आप सारे टेस्ट कराए,
इवन मेरा भी, आप ही की आप ही ने कह रखा है कि मैंने कराए, तो मैंने,
तो जब आप बेसिक को ध्यान में रख के चलेंगे तो ऐसी चीजें नहीं होती हैं।
और अगर किसी को हो भी रहा है ना, अगर टाइमली टेस्ट कराए तो उसको पता चल जाएगा, वो पकड़ में भी आ जाएगा।
मेरा इवन हर 4 months में ब्लड डोनेशन का है, मैं मतलब खुद करता हूँ एंड लाइक वॉलेंट्री है, बट देन इट हैज़ बीन वेरी इफेक्टिव आफ्टर कोविड, मतलब मेरे को बॉडी बहुत अच्छी लगी। मेरा एक बार थोड़ा सा ब्लड थिकन ज़्यादा हो गया था, 17.7 HB पहुँच गया था, तो आई थॉट इट वुड हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ कुछ साइड इफेक्ट आ रहा हो उसका वैक्सीन का या किसी भी तरीके का, तो द बेस्ट वे आई थॉट वॉज टू गो फॉर ब्लड डोनेशन, कि ब्लड निकलेगा नया बनेगा तो एक साइकिल शुरू हो जाएगा, तो एंड आफ्टर दैट इट हैज़ बीन ब्यूटिफुल, मतलब मुझे तो अच्छा है। मैं वीट ग्रास जूस नेचुरली कंज्यूम करता हूँ अपने, उससे कोई बाहर कंपनी या किसी का नहीं, अपने घर में वीट ग्रास लगी हुई है, एवरी डे आई कट इट, एवरी डे आई मेक द जूस, घर में सबको मिलके पिलाता हूँ, खुद भी पीता हूँ।
जहाँ तक हो सके नेचर के पास रहिए, नेचर से जो आपको नेचुरल चीज़ें मिलती हैं, मैं खुद एक नेचुरोपैथिस्ट हूँ और मैं अपने जिम की ट्रेनिंग और डाइट में वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा लोगों को सजेस्ट करते हैं नेचुरल चीज़ों पर रहना, तो वही हम लोगों को कहते हैं कि जितना हो सकता है कि आप आर्टिफिशियल सिंथेटिक चीज़ों से दूर रहें, लेकिन अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप उसको बिल्कुल अवॉइड भी नहीं कर सकते, डेफिशिएंसी में जाने से अच्छा है आप लीजिए बेसिक।
हाँ डेफिनेट, डेफिशिएंसी में जाना तो क्यों ही है जब चीज़ें अवेलेबल है, क्योंकि वो चीज़ें भी किसी ना किसी रिसर्च के थ्रू ही आई हैं मार्केट में, उनको भी अप्रूवल्स मिले हुए हैं नो डाउट, बट हाँ अगर वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तभी कंज्यूम की जाए, तभी ज़्यादा अच्छा है।
अब सिंपल एग्जांपल है, इंडियंस में विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी रहती है, मतलब आप किसी का भी टेस्ट करा लो 100 लोगों में से कम से 90-95% का कम ही निकलेगा, तो वो विटामिन डी सबको चाहिए और लोगों को पता भी नहीं है इसके बारे में कि विटामिन डी उनका कम है, और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है।
मास लेवल पे कम होना, मतलब लाइक क्या ये टेस्ट में कुछ इस तरीके का है या एक्चुअली में कम है, बिकॉज रिपोर्ट्स कैन बी रॉन्ग, कुड बी मिसलीडिंग, कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है इस तरीके का, तो मतलब ठीक है, मतलब मैं मानता हूँ सैंपल स्पेस इतना एक पर्टिकुलर डेफिशिएंसी के लिए कुछ ज्यादा ही है।
इस पे हम दोनों कमेंट करते, मुझे नहीं लगता कि अच्छे लगते हैं।
नहीं बात
हमारे सामने जो रिपोर्ट आएगी हमने तो उसको ब्लाइंडली
नहीं, डेफिनेटली मेरा भी खुद आया था, बट देन इट वाज अलार्मिंग फॉर मी। मतलब मैं भी एक बार के लिए घबरा गया था, बट मैं आई गेस मैं थोड़ा सा इसको साइड करके मैंने कहा नहीं ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि मैं बहुत ध्यान रखता हूँ अपने विटामिन डीज का है। मतलब लाइक सनलाइट में बैठना, लाइक इवन दो 45 डिग्रीज में कौन बैठेगा, वो भी दिल्ली के अंदर। बट फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट टू कि हाँ मैं 15-20 मिनट बैठूँ सिर्फ सनलाइट लेने के लिए।
तो वही लॉजिक है, अगर डाउट है तो दोबारा किसी और
कराओ,
किसी और लैब से टेस्ट करा लो, अगर रिजल्ट सेम आता है
तो फिर ऑफ कोर्स देन फिर तो आइट्रेशंस मिल जाती हैं।
राइट,
बट आई थिंक सर सही कह रहे हैं कि इस पे कॉमेंट नहीं किया जा सकता है।
आप ये देखो, जब मेरी सर्जरी हुई थी तो मेरा विटामिन D4 था, ठीक है, और उन्होंने बोला था कि इमीडिएटली आपको विटामिन D बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आपका रिकवरी भी आगे होनी है, तो इंजेक्शन लगे थे मेरे को। तो अब है कि मुझे, अब मैंने लास्ट जब टेस्ट कराया था लास्ट आई गेस अक्टूबर में, तब मेरा अराउंड 50 समथिंग कुछ था, तो विच इज़ अबव द नो परमिसेबल लिमिट, मतलब परमिसेबल क्या जितना थ्रेशोल्ड होता है, मतलब रेंज में होता है उसके ऊपर ही था, अच्छा था वो उसकी वैल्यू, तो ठीक है वो मेंटेन कर रखा है। अब लेटेस्ट अब जब टेस्ट कराऊंगा इस मंथ तो पता चलेगा नेक्स्ट कहानी क्या है।
रजत के रिहैब में सबसे जरूरी जो हमारे लिए अचीवमेंट रहा वो ये रहा कि जब हमने उसको लेग्स की स्ट्रेंथनिंग पे डाला स्टार्टिंग में, तो बहुत डेडिकेटेड था और उसके अंदर ये था कि मुझे वापस आना है, एनिया मुझे वापस आना है। और स्पेशली जब भी हम शॉर्ट्स में वर्कआउट करते उसको डिफरेंस दिखता था दोनों लेग्स में, तो वो हमें और ज़्यादा मोटिवेट करता था कि जहाँ तक हो सकता है दोनों को सेम लुक पे लाना है। तो अगर आज आपके सामने रजत है तो आपको अब ये नहीं पता लग रहा कौन से लेग में उसको सर्जरी हुआ है।
लेकिन चीज पूछना चाहूंगा,
और आपको पता भी नहीं लगेगा जब रजत जिम में रनिंग करता है, अभी ट्रेडमिल पर भी खेली या मैनुअल करता, तो आप देखकर नहीं बता सकते उसको कौन से लेग में इंजरी रहा है।
ये स्पेसिफाई करता है, तो दैट इज अ क्वेश्चन।
तकरीबन 1.5 साल लगा है उसको प्रॉपर नॉर्मल एक अच्छे जॉगिंग पे आने में और ऐसे फिजिक को वापस आने में। बिल्कुल,
तो जैसे 2019 में इंजरी हुई थी, मेरे यहाँ दो पार्ट क्वेश्चन है बेसिकली। तो 2019 के वजह से स्टार्टिंग ऑफ 2020 वाज यू नो दैट कोविड स्टार्टेड, तो वो ब्रेक जो लगा होगा या किस तरीके का रूटीन ब्रेकअप, आई डोंट थिंक सो होना चाहिए, बट देन वो मेंटेन कैसे किया?
एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरा जब ऑपरेशन हुआ था दिसंबर 2019 में, तो 3 महीने तो ऑटोमेटिकली वैसे ही मैं बेड पे था, ठीक है, और मैं अपना पैर जमीन पर रख भी नहीं सकता था, एंड ऑल ऑफ सडन फिर कोविड हिट कर गया था। तो उस टाइम पे ये करा था कि मैं डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन लेता था, उन्होंने मुझे चीज़ें बताई थी जो एक्सरसाइज करनी थी और वो मैं करता था। मेरे को ये था कि हाँ भाई मेरे को रिकवर करना है, क्योंकि मेरा ये था कि पैर सीधा हो गया था, मुड़ भी नहीं सकता था, तो वो बेंडिंग एक्सरसाइजेस थी, वो सारी चीज़ें थी, तो वो अंदर से था कि मुझे जंप ऑन करना ही करना है, वापस आना है। तो मैंने घर पे ही मैंने एक्सरसाइज शुरू करी, घर पे ही वॉकिंग शुरू करी। जैसे ही लॉकडाउन खुला तो मैं फिर बाहर निकलता था। एक स्टेज ऐसा आया कि विद इन से एक साल बाद, सर्जरी के एक साल बाद, तो मैं बाहर 1 घंटा कंटिन्यूस जॉगिंग कर सकता था। मतलब अपने आप को मैंने ऐसे ट्रेन कर लिया था, बट उसमें एक नेगेटिव चीज़ हो गई थी कि मेरा वेट एकदम गिर गया। सो मैं सर्जरी से पहले 84 kg था, सर्जरी जब मैं प्रॉपर रनिंग और ये जॉगिंग पे आ गया था 1 घंटा करता, तो मेरा सीधा वेट 69 आ गया था। तो वो एकदम विजिबल हो गया था कि हाँ भाई ये
कमज़ोर
हो गया है, बॉडी स्ट्रक्चर ढल गया है, वो सारा चीज़ें हो गया। तब मेरे को ये एक बहुत हिट कर रहा था कि नहीं यार अब दोबारा उस फॉर्म में आना है जो पहले था, बट ऑब्वियसली इन अ मच मोर क्लीनर वे और अच्छा मसल्स लेके आना है। तो वो भी तब मैंने वनिल सर के पास, उन्होंने हेल्प करी और वो तब की बात वो है, और आज देखो आप वो कंप्लीट मेकओवर है।
सवाल ये है, इसी को आगे बढ़ाते हुए, इसी सवाल का जो सेकंड पार्ट था वो मेरे में था कि राइट लेग में इंजरी हुई थी
जी,
क्योंकि जब आपके मेरे खुद के ग्रेड 1 है इस टाइम, मैं ग्रेड 2 से नीचे आया हूँ, बड़ी मुश्किल से आया हूँ, ACL ही हुआ है मेरे को, बट जब एक पैर में हो जाता है तो दूसरे पे प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज आप लंच करते हैं, मतलब एक पैर को अवॉइड करते हैं वेट, तो उस चीज को मेंटेन करना, उस चीज का डेफिनेटली आपके दिमाग में ख्याल तो होगा।
देखिए
मैं रजत के में भी होगा, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज
ऑब्वियसली था,
बट उसको कैसे हैंडल करना, बिकॉज ये चीज ना, ये पर्सनली मैंने बहुत लोगों को देखा, क्योंकि आई हैव बीन अराउंड पीपल हु हैव गॉन थ्रू एसीएल टीयर्स, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके हुए हैं, बट दे हैवंट बीन एबल टू डू इट। लकीली मेरे दोनों में था, तो आई हैड नो ऑप्शन। बट
आपको ये कि बहुत कम लोगों को पता है कि एक्चुअली मेरे को फर्स्ट टाइम जब लगी थी ना 2010 में ही लग गई थी, उस टाइम पार्शियल टीयर था। तो इन स्पाइट ऑफ दैट मैंने उसी टाइम ही अपने आप को ट्रेन करा था, मतलब ऑब्वियसली उस टाइम ऐसा नहीं था कि डेडिकेटेडली करता था, बट हाँ 2010 में फिर मैं 10 में लगी थी मेरे को, और 19 में मेरा पूरा टीयर हो गया था। तो उस टाइम तक मैंने उसको संभाला था, बट उसके बाद तो आपको मैंने बताइए क्या एग्जैक्टली हुआ, क्या चीज़ नहीं हुआ।
जब रजत को कंप्लीट ईयर हुआ, आई थिंक पेरिस में थे आपका,
मैं था वहाँ वियना में, था
वियना में, इन्होंने रजत ने मुझे कॉल किया, भैया मुझे चोट भी लगी, और ये दिल्ली भी सर्जरी के बाद भी रजत का कॉल आया कि भैया सर्जरी हो गई है। फिर जब रजत पहली बार मेरे से मिलने आए तो वो ड्रेस वगैरह लगाया था उसको, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है आप ही थोड़ा टाइम निकालो, फिर मिलते हैं। फिर कोविड आ गया, तो रजत ने धीरे धीरे वॉक शुरू की, हल्की जॉगिंग शुरू करी, वेट भी कम हो गया। लेकिन जब हम मिले तो मैंने देखा कि उसको ना मसल लॉस बहुत ज़्यादा है, तो एक्सेस ऑफ कार्डियो के भाई कुछ तो करे बंदा। तो उस टाइम पे ना नी की बहुत रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट टाइप समझ लो आप, और वो स्ट्रेंथ हमें दिखी नहीं कि उठने बैठने में, बैठ के उठने में फील कि भाई हाँ अभी दिक्कत है, बट हमने भी रेंज को बहुत कंसल्टेशन के साथ में फॉलो करा कि कितना रेंज अभी जरूर दे सकते हैं, कितना धीरे उसे इम्प्रूव करना है, हम ज़्यादा फोर्स लगा के उसको और इंजरी तो नहीं बढ़ा देंगे, ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते रहे।
नहीं मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये बात बिल्कुल बात ठीक है, मैं बिल्कुल बात है, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बट मैं उन छोटी छोटी चीज़ों में से एक बात जो मुझे जो लगती है, जो बहुत लोग मिस करते हैं, कि अगर किसी एक टांग में इंजरी हो जाए, ACL जैसी ड्रेडली इंजरी, तो आप दूसरी टांग पे बहुत प्रेशर नेचुरली डालना शुरू हो जाता, तो उसको बैलेंस कैसे करना है ड्यूरिंग दैट पीरियड।
हुआ क्या था, ये हुआ था मेरे,
ये कैसे प्रिपरेशन दोनों मेंटली एंड फिजिकली कैसे
ये आप लोगों ने क्या किया? हुआ था मेरे लेफ्ट वाले पैर पे पेन होना शुरू भी हो गया था, क्योंकि फिर मेरे को वेट कम करना पड़ गया था, वही सॉल्यूशन था उसको उस टाइम पे,
वेट थोड़ा कम किया, और साथ में जब आप स्ट्रेंथनिंग करोगे तो आप दोनों की करोगे। इसमें ये नहीं कि भाई उसमें चोट लगी है, तो आपको स्ट्रेंथनिंग करना है तो दोनों को ही करना है, ट्रेन करना है,
बट उसमें ये ध्यान रखना क्या जरूरी होता है कि एक में तो आप
नहीं, नहीं,
चोट
नहीं,
लगी है, दूसरे में आप प्रेशर ज्यादा डाल रहे हैं, तो उसको कैसे बैलेंस करने की वो।
देखिए मैंने आपको पहले भी एक बताया था कि स्ट्रेंथनिंग के बाद जो एक रेस्ट का पीरियड है वो बहुत मायने रखता है, वो दोनों पैरों के लिए रेस्ट होता है, किसी एक के लिए कंप्लीट बॉडी के लिए रेस्ट होता है, तभी बॉडी रिकवर करती है।
हम ये नहीं कह सकते कि एक पैर की एक्सरसाइज करते रहे, एक पैर की नहीं करें, फिर वो उल्टा हो जाएगा हिसाब के साथ,
दोनों को आपको ट्रेन करना,
दोनों करना ही पड़ेगा, स्पाइट किसी में इंजरी है या किसी में इंजरी नहीं है।
तो रजत आप वियना से कैसे वापस आए, मतलब इतनी इंजरी के बाद, बिकॉज मैं तो फ्लैट हो गया था अपनी सेकंड, मेरा तो राइट में था पहले, बट सिंस इट वॉज अ पार्शियल टीयर, तो पार्शियल टीयर मेरा फिर लेफ्ट में भी हो गया, तो सिंस आई हैड टू कम बैक, मेरा तो वीज़ा भी थोड़ा मतलब लाइक एक्सपायर ही हो रहा था आफ्टर स्टडीज, तो मुझे तो वापस आना ही आना था। बट
आप ये सोचो,
यहाँ तो कंप्लीट ईयर की बात हो रही है, कंप्लीट ईयर तो हैंडल करना मुश्किल होता है।
जब वियना में मेरे को लगी तो समझ तो गया था मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है, जिन मैंने उन डॉक्टर को फ़ोन करा जिन्होंने मेरे को 2010 में हेल्प करी थी, रिहैब करा था उन्होंने रिकवर करने के लिए, उनको फ़ोन कर दिया, तो उन्होंने बता दिया था हिंजेस वाला नी ब्रेस पहन लो, आपका बेटर आप चल पाओगे, और अपना नी एलिवेटेड रखना और आइस पैक करते रहना। और कोइंसिडेंटली ऐसा है कि मुझे उसके बाद दूसरी कंट्री भी ट्रैवल करना था, तो मैंने अपने पैर पे नी ब्रेस बांधा, और फिर मैं ऑस्ट्रिया से फिर मैं हॉलैंड गया, बेसिकली बुडापेस्ट गया, बुडापेस्ट में मैंने अपनी ट्रिप एंजॉय करी, देन फिर मैं इंडिया आके मैंने मेरा ऑपरेशन कराया।
यही तो हमें जानना था, यही तो हमारे दर्शन जानना चाह रहे थे कि मतलब बंदा बाहर इंजर हुआ है तो ये आने का क्या जर्नी रही होगी।
जैसे रजत ने अपनी जर्नी को टाइम दिया, वैसे अपने रिहैब को भी टाइम दिया, डेढ़ साल डेडिकेटेडली उसने वर्कआउट किया है और आज भी कर ही रहा है। और आप ये लगा लो कि मेरे जैसे अगर मैंने प्लान किया कि रजत ये हमारा इस मंथ का टारगेट है और हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं, तो वही उतना ही वो करता है, और उसके बाद उसको रिकवरी लेके और अपना डाइट।
आई थिंक रिजल्ट्स हैव बीन देयर, गुड रिजल्ट्स।
बिल्कुल है, बिल्कुल। मतलब मैंने बोला, अब जैसे मैंने लास्ट ईयर सितंबर में बाली ट्रैवल करा था, मैंने इनको, मैंने भैया को बोला था कि मेरे को ना थोड़ी सी अच्छी बीच वाली बॉडी बना के दो, तो उन्होंने बहुत हेल्प करा। एब्स भी है मेरी आ गई थी उसी टाइम, मेरी आ गई, मेरे 3 मंथ्स में निकाल आ गई थी, अच्छी खासी आ गई थी, वो रिजल्ट भी था। और अभी जून जनवरी में भी गोवा गया, तो वहाँ पे भी सारा वो मेंटेन कर रखा था, तो सारी असिस्टेंट इनकी
थोड़ा मतलब थोड़ा फन साइड भी रहा है आप दोनों में।
बिल्कुल बिल्कुल,
कि मतलब अगर कहीं ट्रैवलिंग है तो प्री पहले से ही मतलब ऐप स्कोर पे फंक्शन, मतलब थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया गया।
2 से 2.5 महीने का एक हम छोटा स्मॉल गोल रख दे, मैंने आपको पहले भी कहा था छोटे छोटे गोल रखना जरूरी है, तो हम छोटा एक गोल रख लेते हैं, ठीक है यहाँ जाना है, ठीक है इतना जो ये रेशो है हम इसे ये कट डाउन कर रहे हैं, इसको इतना इम्प्रूव कर रहे हैं, ये चीज़ें ऐड कर रहे हैं, और वर्कआउट में ये थोड़ा और चेंजेस ला रहे हैं।
तो उसमें पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स का, जैसे शोल्डर है तो शोल्डर पे कितना वर्क होगा, कितना उसका साइज रहना चाहिए, कैसे मतलब बॉडी और पर्सन की लुक के हिसाब से, वो भी थोड़ा बाद में आई थिंक आ गया होगा।
बेसिक मूवमेंट्स हैं वो तो चलता ही है सभी के सारे, इसमें सबसे मैं फिर वो आपको कहूँगा, इसमें भी है ना लोग आधी बार रिजल्ट आपको इसलिए कि आप ओवर ट्रेन
करते हैं,
ठीक है। हम मैंने आपको जैसे रजत ने बोला, मैं भी बता रहा हूँ कि 35 to 45 मिनट सफिशेंट है आपके वर्कआउट के लिए, और उसमें आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर सकते हैं, जितना करेंगे वो रिकवर्ड होगा, आपके सेल्स रिकवरी करेंगे तो मसल और जल्दी डेवलप होगा, जितना मसल डेवलप होगा उतना बेटर आप दिखेंगे, सिंपल है।
तो एक कंट्रोल लास्ट मतलब लाइक फ्यू क्वेश्चंस, कि मसल तो अगर टूटा है तो ग्रो करने के लिए,
मसल टूटना सही वर्ड नहीं रहेगा, जो हमारे सेल्स जो रप्चर होते हैं टूटते हैं उसको ही रिकवरी होती है,
तो वो कंट्रोल कैसे करना है कि कितना कितना मतलब जैसे नहीं, कि नहीं, अगर बाइसेप्स है, कि अगर बाइसेप्स 13 to 14 इंच है या 17 इंच है,
नहीं
तो
नहीं वो
उसको मेंटेन करना कितना
ऐसा है, इसके लिए मैं बताता हूँ आपको, जब आप ट्रेनिंग करते हैं बेसिकली, तो जब आप लोड कोई भी लोड ले रहे हैं तो एक परसेंटेज के हिसाब से आप धीरे धीरे, आपको पता होना चाहिए आपका 1 रैप मैक्स कितना है और उसका आपको कितने परसेंट उठाना है, कितने रैप आएंगे, तो एक रफ आइडिया आपको लगता है, उसमें फिर ट्रेनर का रोल आता है, आपको वो पुश करता है कि भाई 7 को हमने 10 रैप्स में कन्वर्ट करना है, वो ऐसे छोटे छोटे टारगेट आप सेट कर दो।
मैंने जैसे अपने में खुद के में मैंने रैप्स कम कर दिए, अगर मैं अपने बाइसेप्स की बात करूँ तो मेरा 12 से 13 आ गया था इंच में, तो आई थॉट दिस इज नॉट लाइक मी, ये मुझे नहीं चाहिए इतना हैवी नहीं चाहिए, तो मैंने अपने रेप्स कम किए हैं, मैंने थोड़ा सा वेट अप किया है, एंड लाइक इट हैज़ बीन गुड।
देखिए अगर आप
अचीव्ड माय ऑब्जेक्टिव, कि
अगर आपको मसल गेन करना है तो आपको रेपिटेशन थोड़ा सा कट करके और उसका जो लोड है उसको थोड़ा सा आप अप करते हैं और न्यूट्रिशन बढ़ाते हैं तो मसल अच्छा गेन होता है, ठीक है। ऐसे अलग अलग पैटर्न है हर चीज़ का, लेकिन बार बार मैं वही कहूँगा कि आप ट्रेनिंग कर रहे हैं और एक ही पार्ट की आप 8 से 10 एक्सरसाइज लगा रहे हैं, वो कभी ग्रो नहीं करेगा, तो इस चीज़ का बहुत आपको ध्यान रखना।
ये तो मैं एग्री करता हूँ, मतलब लाइक दिस हैज लाइक, ये तो मैं बहुत एग्री करूँगा कि अगर आप बार बार ही एक ही पार्ट के ऊपर एक्सरसाइज करते रहेंगे तो इट इज़ नो गुड,
कोई फायदा नहीं होता, उल्टा
आप थक ही रहे हैं, आप थक ज़्यादा रहे हैं और
डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा, इंजरी भी हो सकती है उससे, तो ये एक तो फैक्टर रहता है हमेशा कि ओवर ट्रेन करोगे तो फिर तो इशू आएगा ही आएगा, मेन है कि ट्रेन प्रॉपरली करो और रेस्ट लो।
सर आप कोई कंक्लूडिंग आर्गुमेंट, आपकी कंक्लूजन क्या देंगे आप इस हमारी डिस्कशन का, क्या क्या कहना चाहेंगे यूथ को, किस तरीके
मैं
से
सभी को यही बोलूँगा कि अगर आप किसी इंजरी से वापस आ रहे हैं तो भी आप वर्कआउट करें, अगर आप किसी इलनेस में सफ़र कर रहे हैं तो भी आप वर्कआउट करें उससे बाहर आए, अगर आप बिल्कुल अभी आप ओबीज हो चुके हैं तो भी आप वर्कआउट करके उससे बाहर आए, और अगर आप बिल्कुल 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 फिट है तो आपके लिए और ज़्यादा ज़रूरी है उसको मेंटेन करना, तो आपकी कोई भी कंडीशन है आप वर्कआउट ज़रूर करें, किसी भी टाइप का करें, कोई भी एक्टिविटी करें, बट ज़रूर करें।
रजत योर कंक्लूडिंग सेगमेंट।
मैंने जो अपनी लास्ट 1.5 ईयर्स की जो जर्नी एक्सपीरियंस करी है तो उसमें मैं यही बोलूँगा कि आपको पेशेंसली अपने आप को विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है, और डेडिकेशन आपको दिखानी पड़ेगी और रिजल्ट्स का वेट करना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपको सारा रिजल्ट आ जाएगा, आपको वेट तो डेफिनेटली करना ही पड़ेगा और साथ बाय साथ आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन, स्लीप वो सारी रखनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल फैक्टर रहा है जो मैंने एक्सपीरियंस करा है। आपको वेट, डेडिकेशन, पेशेंस लेवल मेंटेन करना है और रिजल्ट आपका डेफिनेटली आएगा, चाहे वो एक महीने में आए, दो महीने में आए, बट आएगा ज़रूर। लेकिन आपको वेट करना ही पड़ेगा, जो आप छोटे छोटे गोल कर सेट करोगे ना तो आएगा। तो ये चीज़ रहेगी आपकी। तो आपको फ्यूचर, अगर आप जो भी इसको सुन रहा है, तो मैं तो यही पर्सनली एडवाइस करूँगा कि अपनी बॉडी की सुनो, ठीक है। अगर पेन हो रहा है तो उसको मत छेड़ो और सर्टिफाइड ट्रेनर के पास ही जाएं, जो कि आपको प्रॉपरली गाइड कर सके। अगर आपको इंजरी है तो वो ही बताएंगे किस लेवल पे वो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, किस एंगल पे आपको करनी चाहिए, और विद टाइम ही सारी चीज़ें रिकवर हो ही जाती हैं। तो प्रॉपर सर्टिफाइड ट्रेनर के पास जाएं, उनसे असिस्टेंस लें, वही आपको गाइड करेंगे आपको कितना करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए।
थैंक यू रजत, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू जेंटलमैन, एंड वी विल बी बैक विद अनदर एपिसोड समथिंग ऑन दिस लाइन। थैंक यू एवरीवन।